अब हमारी स्थिति दातापन की होनी चाहिए। केवल शुद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा तो हूं ही हूं, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे अब आत्म अभिमानी बनो। अभी दो दिन चार दिन पहले बच्चे मुरली भी सुनते हो तो आत्म अभिमान। हम स्वरूप कब बनेंगे है ये गहरी बात जो मैं आप सबसे कहने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। बार कहते हैं बच्चे मुझे नेमी नाथ नहीं चाहिए। हमारे बहुत से भाई बहन हैं इतने पक्के हैं, कुछ भी हो रात को 12 बजे सोएं, 1 बजे सोएं, रात को सेवा करके कहीं दूर से आए थके हुए हों तो भी 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे, फिर यूं यूं करते रहेंगे। और कई सोचेंगे ऐसे ऐसे करने से तो ज्यादा अच्छा है, आज मैं रात को 12 बजे सोई, भाई मैं तो सवेरे 5 बजे या 6 बजे उठूंगी और फिर उसके बाद अमृत वेला करूंगी। आप कहेंगे दैट इज बेटर, मच बेटर। लेकिन मेरी मनोस्थिति क्या होगी? संबंध मनोस्थिति से है। योग क्या है? मनोस्थिति को ऊंचा ले जाता है। अब हम जब भी बाबा की याद में बैठेंगे, जब भी योग में बैठेंगे, और धीरे धीरे आप ये अनुभव करेंगे, अगर आपने एक बार ये अभ्यास कर लिया दिल से, मैं बाबा के साथ बैठी हूं, परम धाम में बैठी हूं और पूरे विश्व को लाइट माइट दे रही हूं, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर के बैठी है। ट्रैफिक कंट्रोल है, झट से ये संकल्प आए मैं पॉइंट ऑफ लाइट एकदम शिव बाबा के साथ परम धाम में सारे विश्व को दे रही हूं। या एक मुरली में बाबा ने कहा बच्चे अगर तुम एकदम शांत में चले जाते हो, शांत माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं नहीं। अब मेरे यहां से रटन चल रही है शांत स्वरूप हूं और यहां तो बहुत हलचल है, ऐसा ना हो जाए ऐसा ना, वो फलाना आया नहीं आया, मैंने उससे ये लेना है, तो ये शांत स्वरूप नहीं है। मेरा चित्त माना मेरी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, इमोशंस, अमृत वेला सफल करने के लिए पहला अभ्यास कहें, पहला नियम कहें, दिन में हजारों बार हम घड़ी घड़ी अपने आप को ये डायरेक्शन दें, मेरा चित्त एकदम शांत है। आप अभी भी एक सेकंड के लिए अपने अंदर जाइए, सब कॉपी पेन छोड़ो और देखो मेरा चित्त जो है वो किस स्थिति में है। देखो आपको चित्त देखना आता है? कोई शेयर कर सकता है किसी ने देखा मेरा चित्त कैसा है? आप देखेंगे हमारे चित्त में जो मन के अंदर भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, कोई तो बहुत खुश होंगे, अरे वाह मधुबन में आए हैं, अंदर में उमंग है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तपस्या करेंगे, भट्टी करेंगे, हमारी दीदी ने अच्छा प्रोग्राम, वाह बाबा तूने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया, चलो और कोई नहीं ना, बाबा तूने कितना, मन की जो भावनाएं हैं सागर की तरह ना लहरें हैं। और कोई कोई हो सकता है आज आए होंगे, दोपहर तक आए होंगे, थके, बाबा बस आज की रात तो मैं थोड़ा आराम कर लूं कल से। आप किस फीलिंग में है, कौन से भाव में है, ये है हमारे चित्त की अवस्था। स्पष्ट हुआ भाइयों को? स्पष्ट हुआ माताएं? स्पष्ट हुई ये बात? मेरी चित्त वृत्ति कैसी है, जिसको पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। हम चित्त वृत्ति निरोध नहीं कहते हैं, हम चित्त वृत्ति शुद्धिकरण कहते हैं, एकदम शांतिकरण कहते हैं इसको, हम एकदम शांत। जैसे जो मैंने आपसे पहले पूछा परम धाम में मुझे कौन कौन पहचानेगा, वो स्थिति मुझे यहां इमर्ज करनी है। अनेक बार दिन में हम अपने आप को भीतर में ले जाएं और ये पक्का कराएं मेरा चित्त एकदम शांत है, कोई लहर नहीं है, ना सुख की है, ना दुख की है, ना गम की है, ना आनंद की है, ना शांति की है, ना अशांति की है। कई बार हम क्लास में आते हैं, योग में आते हैं और पता होता है आज योग के बाद पिकनिक होगी और पिकनिक में कोई मेरा फेवरेट आइटम बना हुआ है, आज समोसा बना है या फलानी, तो योग में तो बैठेंगे एकदम ध्यान, कौन सी लहर हुई, चित्त कहाँ है, मेरे चित्त में एकदम ये भूल जाए, एकदम साफ। जो बाबा कहते हैं बच्चे याद में बैठो, सन्नाटा छा जाए। अब अगर मेरे अंदर कोई लहर है सुख दुख खुशी गमी की, तो वाइब्रेशन तो वो वाइब्रेट हो रहे हैं ना, तो सन्नाटा नहीं छाएगा। मेरा वाइब्रेशन जो चल रहा है वो आपको भी या उमंग में ले आएगा, होता है ना कई बार, कई ऐसे आर्टिस्ट भी तो आ जाते हैं ना, आपको हंसा भी देते हैं, रुला भी देते हैं, होता है ना, मेरे वाइब्रेशन भी यही काम कर रहे हैं, आपको हंसाएंगे रुलाएंगे बातें करेंगे, लेकिन एकदम शांत। तो दिन में अनेक बार अभ्यास करके अपनी चित्त वृत्ति को पहले हम एकदम शांत बनाए, आप पाएंगे कि ये चित्त वृत्ति का शांत होना, जो बाबा कहता है बच्चे अटेंशन रखो, हम कहते हैं बाबा हम तो भूल ही जाते हैं, कई बार साकार मुरलियों में तो बाबा कहते हैं बच्चे शर्म नहीं आता, थी ना पिछले दिनों में समझती हूँ, एक डेढ़ महीना पहले एक मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे बच्चे कहते हैं हम बाप को भूल, बच्चे शर्म नहीं आता है, बाबा शर्माते हैं हमें, ये कहते हो कि बाबा को हम भूल जाते हैं, हम अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो अब बात ट्रैफिक कंट्रोल की नहीं है केवल कि मुझे 5 बार 7 बार बस यूं खड़े हो जाना है, नहीं, अब तो हर घड़ी मुझे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में ही रहना है। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी माना आप मधुबन में आए हैं, आंतरिक परिवर्तन तो हर कोई अपना अपना जानता है, लेकिन बाहरी परिवर्तन हम कौन सा करते हैं जब मधुबन में आते हैं, कौन सा करते हैं, सबसे पहला वाइट ड्रेस है ना, टीचर बहने तो खैर रहती ही वाइट ड्रेस में है, लेकिन जो घर गृहस्थी वाले हैं आप लोग अपने घरों में थोड़ी वाइट ड्रेस में रहते हो, रहते हो बिजनेस वाले, यहां मधुबन में आएंगे तो सोचेंगे आप मधुबन में तो योग बैठी है, थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, कपड़ा ऐसा लाएंगे चाहे 2 ड्रेस 3 ड्रेस वाइट अपनी, ये हमारा बाहरी परिवर्तन है। इसका मतलब मधुबन में आना ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना माना हमारा लाइफ स्टाइल का पहला एक पार्ट है, अगर हम योग तपस्या करना चाहते हैं तो हमें अपनी वाइट ड्रेस में आना है। आपके सेंटर पर भी अगर दीदी कहेगी आज योग भट्टी है, आप प्रयास करेंगे कि हम वाइट, चलो हल्का सा रंग, कोई बहुत ज्यादा मेकअप करके और सज धज के और बहुत चमचम करते कपड़े पहन के आएगा योग भट्टी में, क्या विचार है आप सबका, और कोई ऐसे आ जाए कहेंगे ये योग भट्टी करने आया है क्या करने आया है, इसका मतलब तपस्या का ये लाइफस्टाइल है, ये हमारी बाहर की, हम इस स्टाइल को हम बाहर से एडॉप्ट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मेरे अंदर के लाइफस्टाइल का क्या हाल है, हम आए हैं हो सकते हैं अलग अलग सेंटर्स के भी भाई बहनों, भाई उससे मिले आपके वहां क्या हो रहा है, क्या सेवा का प्रोग्राम है, राखी पर क्या करेंगे, हाँ कोई तो अच्छी अच्छी बात करेंगे, कोई बीच में फिर थोड़ी खट्टी मीठी कड़वी भी कर लेंगे तेरी मेरी। अगर अभी तक हमारा ये लाइफस्टाइल है तो हम भूल जाएं हमें अमृत वेला करना है, दिन भर के चार्ट में यही लिखना है आज मैंने वाचा से या मनसा से अगर कहीं भी पर चिंतन किया तेरी मेरी की, मेरा अमृत वेला कैसा होगा, होगा वो बात मुझे बार बार हिट करेगी। इवन मैंने देखा अभी ये भाई बैठे हैं आगे, मैं इनको जानती हूँ, चाहे नाम से नहीं जानती वैसे, अच्छा ये भाई मधुबन में आया है ना, इससे मुझे ये काम करवाना है, मैं उठ के चलो क्लास के बाद, कैसे ना कैसे मेरी आंख कैसे घूमेगी फिर, पता है ना, यहां भी बैठे हैं, फिर उठेंगे कहेंगे भाई जी मिलके जाना, नहीं तो कोशिश होगी सवेरे मुरली क्लास के बाद जरा ढूंढू भाई जी कहां बैठे, तो मेरी ये कर्म इंद्रियां कैसे चलेंगी। तो पहला पहला योगी का जो लाइफस्टाइल है इंटरनल, चित्त एकदम शांत, चार्ट ये रखना है, जो हम कहते हैं क्या करें व्यर्थ तो आ ही जाता है ना, और बड़ी सहजता से कह देते हैं बहन जी हम तो दुनियादारी में रहते हैं तो व्यर्थ तो आ ही जाता है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जिन्होंने पढ़ी होगी सुनी होगी, चाहे बाबा लौकिक में थे चाहे बाबा बन गए अलौकिक में आ गए, लौकिक जीवन में भी बाबा ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। निर्मल शांता दादी सुनाती थी कभी हम दुकान से हीरे उठा लाते थे तो बाबा कभी डांटता नहीं था, बड़ा युक्ति से, बच्चे तुम हीरे लाए हो ना, बाबा तुम्हारे लिए नए डिजाइन की अंगूठी बना के देगा, लाओ वो हीरे कहाँ है तभी तो बनेगी। तो बचपन था ना, छोटे बच्चे थे तो सोचे थे हाँ, तो फटाफट दे देते थे, नहीं तो कहते थे नहीं बाबा हम नहीं लाए, कहते हम पुड़िया छिपा लेते थे, और फिर बाबा का बना के भी देता था, चलो थोड़े दिन बच्चा पहन लेगा, सुना है ना ऐसा, पढ़ा होगा ना, बाबा बाबा बन गया। कलकत्ता में अखबार वाले ने विरोध किया, अखबार में छाप दिया ये तो साइकिल वाला था, झूठ कहते हैं जौहरी था, भाई बहनों ने कहा बाबा हम इस पर केस करें, बाबा ने क्या कहा, क्या कहा पता है, किसको पता है, अखबार निकला, शुरू शुरू में ब्रह्मा कुमारियों का विरोध बहुत था, किसी अखबार वाले ने कलकत्ता में ये डाला कि इनका जो ये दादा लेख राज है ये ज्वेलर नहीं था, ये तो कोई साइकिल वाइकल का दुकान था, ऐसे उल्टा सुल्टा लिख दिया। जो उस समय थोड़े भाई बहन होंगे उन्होंने बाबा से, बाबा को समाचार दिया और कहा बाबा हम इस पर केस करें, आप सोच सकते हैं बाबा ने क्या कहा होगा, हम तो सबसे पहले कहते हैं हाँ हाँ जाइए वहां पुलिस थाने में FRI दर्ज कराइए, मानहानि का मुकदमा कराइए। बाबा ने क्या कहा, बच्चे उसको सेंटर का निमंत्रण दो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ, पता है आप लोगों को ये बाबा की जीवन कहानी में बहुत बार हम लोगों ने सुना है, उसमें होगा पढ़ेंगे ना, किस किस ने पढ़ी है बाबा की जीवन कहानी, उसको पढ़िए। तो बाबा ने कहा उसको सेंटर पर बुला के उसको ब्रह्मा भोजन खिलाइए और उनको बताइए, आप देखिए बाबा का एटीट्यूड कौन सा था, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। और हम तो क्या करते हैं, लौकिक अलौकिक दोनों में बड़े सुपर, मुझे मालूम तो पड़ जाए कि ये बहन ने मेरी जो है ना वहां जाकर के शिकायत की है या मेरे लिए बोला है उल्टा सुल्टा, पता तो पड़े, कहेंगे अच्छा मैं बताऊंगी ये खुद कैसी है, ये हमारा एटीट्यूड है, आप बताइए मेरा अमृत वेला कैसा होगा, हो ही नहीं सकता है। अमृत वेले का संबंध हमारी सूक्ष्म मनोवृत्ति से है, अमृत वेले का संबंध मेरी सूक्ष्म अपनी धारणाओं से है, मैं सारा दिन में कितना सचमुच शांत रहती हूं, कितना मौन में रहती हूं। दादी जानकी तो कहती है कम से कम सवेरे 4 घंटा तो मौन में रहो, 4 से 8, ये हमारा तपस्या वर्ष है, किस किस को पता है ये तपस्या वर्ष है, हाथ उठाओ जिनको पता है, देखो कितने कम भाई बहनों को पता है कि ये तपस्या वर्ष है, आपको मालूम है ये वर्ष हम लोगों ने बाबा ने तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया हुआ है। तपस्या वर्ष के 7 महीने बीत गए, आज पहली तारीख है ना, शेष कितने महीने रहे, 5। अब आपको मालूम था या नहीं था, फिर भी भाग्यवान हो, आज आपको पुनः एक रिमाइंडर मिल गया है। मीठे भाई बहनों, ये हमारा तपस्या वर्ष है। अभी 2-3 दिन पहले एक मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे कैसे भी करके बाबा को याद करो, अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अब इन शेष 5 महीनों में मुझे क्या करना है, क्या करना है भाई, क्या करेंगे, क्या करेंगे माताएं, बोलते ही नहीं हो आप सब, क्या बात है, कुछ इरादा नहीं है करने का, हाँ नहीं है इरादा, खाली आए हैं, चलो थोड़ा हाँ हमारी भी थोड़ी पिकनिक हो गई, मधुबन में घूम फिर लिया, मौसम बहुत बढ़िया है, ड्रामा अनुसार रास्ता बंद हो गया तो नीचे भी हमने एंजॉय किया, नहीं, प्लीज अंडरलाइन कीजिए। चाहे आपका कितना भी बड़ा परिवार है, कितना भी बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा धंधा है, ये जो मेरे शेष 5 महीने हैं, आपके घर में शादी हो, आपके घर में कोई विशेष कार्यक्रम हो, तो आप सब चीजों को थोड़ी देर के लिए तो साइड करते हो ना। मैं बाबा का बच्चा हूं, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूं, मुझे ये 5 महीने बस केवल तपस्या ही करनी है, दिन में थोड़ा समय अपना काम धंधा कर। अगर हमें एक सिद्धांत समझ आ जाएगा, आप कभी नहीं सोचेंगे या पूछेंगे बहन जी हमारे धंधे का क्या होगा। सिद्धांत ये है, इस संसार में कोई भी चीज बिना तपस्या के नहीं मिलती है। क्या विचार है, राइट है? कई जगह आप लिखा हुआ पढ़ते होंगे कि अगर मेहनत से ही मिलता तो मजदूर तो बहुत मेहनत करता है मकान बनाने का, पर रहता कहाँ है, महलों में कोठियों में कौन रहते हैं, वो तो आप और हम रहते हैं, वो बेचारे तो वहीं झोंपड़ी में ही रहते हैं। मेहनत से नहीं मिलता है, मेहनत प्रॉपर वे में हो, कौन सी मेहनत, पुण्य जमा करने की मेहनत, और पुण्य संकल्पों से जुड़ा हुआ है। हम ये प्रयोग करें, मेरा अमृत वेला सफल हो, बहुत अव्यक्त मुरलियां, अमृत वेला की एक हमारी किताब भी बनी हुई है जिसमें अव्यक्त मुरलियों का सार निकाल के जहां जहां बाबा ने कहा है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बाबा ने कहा बहुत अव्यक्त मुरलियों में बच्चे अमृत वेला पावरफुल होगा ना तो तुम्हारा दिन अपने आप पावरफुल होगा। हम यही प्रयोग करें, मेरा अमृत वेला सफल हो। सफल माना मेरा कोई आज ऑर्डर नहीं आने वाला है धंधे का, लेकिन मेरा मन बुद्धि दिल दिमाग, चार चीजें हैं ना, मन और बुद्धि तो मोटा मोटा है। मैं आपसे बात कर रही हूं, मन में संकल्प आया, टाइम कितना हुआ है, नजर घड़ी की तरफ गई, ये मन है। दिल में क्या है, इतने सब भाई बहन बाबा के घर में आए हैं, सचमुच इनको एक बार ये प्रेरणा ये शक्ति आए, इनका अमृत वेला अच्छा, ये दिल की भावना है, ये संकल्प नहीं है। तो मन और बुद्धि, बुद्धि निर्णय, आपकी बुद्धि ने निर्णय लिया, चलो मधुबन आ गए आप, बैठ गए। दिल दिमाग, अब दिमाग कहता है, बुद्धि ने निर्णय तो ठीक लिया है, लेकिन हम जो आए हैं 3 दिन 5 दिन के लिए, क्या भी हो मुझे तो अब ये 5 दिन यहां सफल करके जाने, कहना नहीं पड़ेगा कि मौन में रहिए, आप यहां से उठ के जाएंगे साइलेंस में रहेंगे, मुझे तो ये 5 दिन साइलेंस। आजकल सबसे बड़ी माया, सबके हाथ में माया है, कौन सी माया है? सबको पता है माया कौन सी है, अब हाथ मैंने दे दिया माया को, अब साथ किसका किसका साथ मिलेगा, मेरा साथी कौन? फिर आप गाना गाते हो मेरा तो एक शिव बाबा, झूठ बोलते हैं, बुरा नहीं मानना। बात समझ गए ना? हाथों में दे हाथ, हम मिलके चलेंगे किसके साथ? माया के साथ। अभी ये 5 मास, आप कहेंगे बहन जी आप नहीं, मोबाइल मैं भी रखती हूं, लेकिन आप मेरे हाथ में कभी मोबाइल नहीं देखेंगे, नेवर, ना मधुबन में ना सेंटर पर। कई बार हमारे मधुबन वाले ही नाराज हो जाते हैं, आपको फोन करते हैं आप उठाते नहीं, मैं साथ लेके चलती नहीं, कमरे में पड़ा है, जाऊंगी देख लूंगी किस किस का मिस कॉल है, जवाब दे देंगे। जरूरी है साथ लेके चलना। यहां मैं ले भी आऊं, साइलेंस में भी रख दिया, अटेंड कर सकती हूं, फिर किस लिए? फिर किस लिए? ये भी दे अभिमान। ना हाथ में बैग है, ना पर्स है, ना मोबाइल है, है सब कुछ पर है कुछ भी नहीं। मैंने कितना अपने आप को फ्री किया है, कितना मुक्त किया है। अमृत वेला के लिए आज भी था ना, मनसा को व्यर्थ बंधनों से मुक्त करो, वरदान था, अगर आपने मुरली सुनी होगी, ये मेरे व्यर्थ बंधन है। पर्स भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, बुरा नहीं मानना। आप कहेंगे फिर आप पर्स लेके चले, कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है आपकी भाई जरूरत हो, लेकिन कहने का भाव है मैंने कितना सब बातों से अपने आप को मुक्त किया है। ये कहना बहुत आसान है, मेरा अमृत वेला पावरफुल हो। अरे अमृत वेला छोड़ो, अगर मैं अभी कहूंगी ना 2 मिनट बाबा की याद में बैठो, तो जो जैसे बैठे ना ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठे, ये कौन सा योग है? योगी की बैठक कैसी होनी चाहिए? चलो ज्ञान हम स्टडी करते हैं, सुनते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होके बैठे, कोई बात नहीं, ऐसे बैठ भी। योग में बैठते हैं तो कम से कम एक्टिव होके तो बैठो। योगी की बैठक, अब कोई कोई योग में बैठे ऐसे बैठे, अगर मैं आप सबके सामने ऐसे बैठूं आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे बहन जी दांत में दर्द है क्या? कहोगे या नहीं कहोगे? तो ये मेरा पोज क्या दिखाता है? अगर मैं ऐसे करके बैठी हूं, कहेंगे बहन जी सिर में दर्द है क्या? आपको गोली वोली दें क्या? योगी कैसे बैठे? तो सबसे बड़ी बात, चित शांत करें। इसके लिए एक नियम, ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि समय तो उतना ही होता है, विषय गहरा है, आप अगर चाहेंगे तो 7 दिन अपने आप को इसके ऊपर कोर्स करा सकते हैं, और करना, खुद को खुद कोर्स कराइए। अमृत वेला क्या है, क्यों हमें अमृत वेला उठ के बैठना है, क्या फायदा है, 7 दिन आप खुद को कोर्स कराइए। चित्त शांत हमारा तब होगा जब हमारा भोजन पर विशेष ध्यान होगा। वो बात अलग है, आप कहेंगे हम साउथ में रहते हैं, हम तो दाल भात खाने वाले हैं, नॉर्थ वाले हैं वो दाल रोटी खाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद एडिशन क्या क्या होता है? केवल दाल भात खा के मेरा पेट भरता है, या फिर ये जो जीव है ना, बहुत चटोरी है, खाने के बाद भी बहुत कुछ मांगती रहती है, कुछ मीठा हो जाए कुछ खट्टा हो जाए। अरे बहुत दिन से तो ये क्या घिया ही खा रहे हैं, आलू ही खा रहे हैं, आज क्या बन जाए? साउथ में क्या क्या बनता है? शायद डोसा इडली तो आपका डेली रूटीन है, लेकिन ये तला हुआ खाना, ये सब खाना, अब मैंने तला हुआ दिन में खाया, मेरा पेट इतना भारी है, अब मैं बैठ के योग करूंगी, क्योंकि एक अव्यक्त मुरली बाबा की है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे ये जो नुमे शाम का समय है 7 से 7:30 इक्वली गुड टू अमृत वेला। अमृत वेला जैसा ही ये एकदम सतोगुणी है, इस समय बहुत पावरफुल याद में बैठी। अब मैंने दिन में कुछ ऐसा खाया हुआ है, अब मैं यहां बैठूंगी तो बैठ पाऊंगी? आप सोचेंगे अगर कि भाई ये तो बहन जी की बातें बड़ी मुश्किल हैं, अमृत वेला भी बहुत मुश्किल है। हम बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन अमृत वेला सफल करने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई है। वो कोई में कोई मैं बनूं, अपने अपने शरीर अनुसार, तबीयत अनुसार सिंपलेस्ट भोजन करिए। कहते हैं ऋषि मुनि तो कंद मूल फल फूल खाके ही रहा करते थे। हम कौन हैं? आप कौन हैं? कौन है? गृहस्थी हैं? गृहस्थी हैं? नहीं स्वीकार करेंगे ना, कहेंगे हम तो राज ऋषि हैं। तो राज ऋषि क्या खाएगा? मिर्च मसाला तला हुआ तो असंभव है। अब रात को हमने विशेष एक पार्टी का आयोजन कर लिया, चाहे वो हमारे सेवा केंद्र पर ही ब्रह्मा भोजन क्यों नहीं था। अब छोला पूरी खाया, अब अमृत वेला गया। आप कहेंगे वो तो ब्रह्मा भोजन था। ठीक लगी ये बात या नहीं, क्या विचार है? जो कहते हैं ये बात राइट है हाथ उठाओ। राइट है? राइट है? ये नहीं उठाता है। नहीं है राइट? नहीं, आप राइट माने या ना माने, हर एक स्वतंत्र है। लेकिन सचमुच राज ऋषि बनने के लिए हमने तो देखा हुआ है साकार में भी मम्मा बाबा को, साकार में भी दीदी दादियों को। भले कोई अच्छी अच्छी डिश बना के ले आता था, दीदी दादी भी एक चम्मच से जरा सा टेस्ट कर लेती थी। साकार में बाबा थे, यूं तो बाबा डायबिटिक भी थे, बाबा का खाना तो एकदम फीका। हमारे यज्ञ में एक रसम था पहले, जिसको कहते थे गिट्टी खिलाना। बाबा खाता था ना, मम्मा हर कोई जाएगा मम्मा बाबा के आगे। बाबा की ऐसे छोटी छोटी दो रोटी, और वो अगर बाबा आपके मुंह में डाल दे तो आपको लगेगा कि बाबा क्या खाता है, एकदम फीका। आप कहेंगे हमारी उम्र तो नहीं है फीका खाने की, उम्र नहीं है ना। वैसे आजकल तो लौकिक में भी देखा जाए तो लोगों का भोजन पर बहुत ध्यान है या नहीं है? क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, पॉल्यूशन बहुत है, किसी को मोटापे की है, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ है। आप 15 दिन अपना ये फूड स्टाइल बदलिए, सिंपल से सिंपल। और सिंपल के साथ एक दिन सेंटर पर ब्रह्मा भोजन नहीं, मेरे घर में भी जो बन रहा है ये ब्रह्मा भोजन है, मुझे मौन में रह के खाना है। बाबा ने बहुत बार कहा है बच्चे मेरी याद में मौन में रह के खाओ। बाबा मौन में रह के भोजन करते थे। शेष 5 महीनों के लिए तो कम से कम हम प्रतिज्ञा अपने मन से करें, हाथ नहीं उठवाती हूं, खुद खुद के मन से प्रतिज्ञा करो, क्या भी हो मैं ये शेष 5 महीने मौन में रह के, साइलेंस में रह के भोजन खाऊंगी या खाऊंगा। अगर हमारा मूड ठीक नहीं होता, मान लो कोई झमेला हो गया, मैं रो रही हूं और खा भी रही हूं, उस खाने का इफेक्ट कैसे होता है? ये जिंदगी में हरेक को कोई ना कोई अनुभव तो जरूर होगा। झगड़ा करते हुए रोते हुए खाना खाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या है? विचार करें, अगर मैंने एकदम शांति में बाबा की याद में, मीरा ने क्या किया, कोई बता सकता है मीरा ने क्या किया?
बोलो बे।
जहर पिया मगर क्या हो गया, अमृत बन गया। भक्तन में इतनी शक्ति थी, उसने जहर को अमृत बनाया। कहते हैं ना मीरा गट गट करके विष पी गई, फिर मरी नहीं। और हमारे में कितनी शक्ति है, हमारे में कितनी है, हम अमृत को विष बना देते हैं। नहीं नहीं, हंसी आती है ना, लेकिन ये रियलिटी है, यही रियलिटी है। सचमुच मुझे आज अभी से मैं जो खाऊं जो पीऊं बाबा की याद में रहेगा। तो अगर हम ऐसे, तो बहुत मैंने आपको कहा आप 7 दिन खुद को अमृत वेले पर कोर्स कराना, लेकिन अगर आप 2 नियम ये अपना लेते हैं, अनेक बार दिन में अभ्यास करना, अभी यहाँ 5 दिन तो किसी को 3 दिन है, 5 दिन है आपकी भट्टी, 4 दिन है, तो आपको कोई धंधा नहीं है यहाँ पे, तो जरा माया का साथ तो छोड़ देना, समझ गए ना कौन सी माया है। आज आपने जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है दे दो, और बता दो कि अब हम 4 दिन आपका कोई फोन अटेंड नहीं करेंगे, आने दीजिए मिस कॉल, मुझे इस माया को हाथ ही नहीं लगाना है। ये साधन है, बाबा कहता है साधनों के गुलाम ना बनो, साधना करनी है, बाकी इच्छा तो अपनी अपनी है। कोई सोचेगा हम तो इतनी गहन साधना के लिए नहीं आए, ये भी आपका चॉइस है, लेकिन अगर सचमुच हम प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, एकदम अपने चित्त को शांति में ले जाओ। और यहां आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आपको ब्रह्मा भोजन मिलेगा, और अगर आपने उसको मौन में रह के खाया तो वो तो क्या हो जाएगा। भले यहां 10 चीजें बनेंगी, आपकी खातिरी के लिए पकौड़ा भी बनेगा, समोसा भी बनेगा, ऐसे नहीं, मन तो बहुत कर रहा है पर बहन जी ने कहा था अब नहीं खाना, ऐसे नहीं, चित्त शांत है ना। आप देखिए मनुष्य कब सोचता है, आप थोड़े थके हुए कहते थके हुए चलो चाय का कप पी लेते हैं, चलो कॉफी पी लेते हैं, जब हमारी मनोवृत्तियां चंचल हैं, मन टिक नहीं रहा है, और जब मन स्थिर है उसको कोई आकर्षित नहीं करता है। गहन विषय है ये भोजन और अमृत वेला। प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना, जो चाहिए खाना, लेकिन ऐसा ही खाना जिससे मेरा अमृत वेला मिस ना। तो अमृत वेला पावरफुल नहीं, लेकिन मेरा अमृत वेला सफल हो। और तपस्या वर्ष में लास्ट में एक बात कहना चाहूंगी, हर भाई बहन अपने अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि हर एक की दिनचर्या अलग है, हर एक की ड्यूटीज अलग है, कम से कम मुझे दिन में 5 घंटा 6 घंटा मौन व्रत रखना है। आप उसको ब्रेक करके भी रख सकते हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं मैं सवेरे 4 से 7 3 घंटा मौन में रह सकती हूँ, ओके, फिर मैं शाम को करूंगी 7 से 10। कोई सोचता है नहीं मैं सवेरे शाम तो मेरे यहाँ बहुत हेक्टिक है, लेकिन मैं दिन में जो है ना 10 से 1। आप अपनी सुविधा अनुसार, पर ऐसे नहीं मौन व्रत है तो मैंने चादर ओढ़ी और सो गई, वो मौन व्रत नहीं है। कहते मेरा मौन है तो सो ही जाते हैं, नींद तो बढ़िया आएगी। मौन व्रत माना मैं उस समय मुरली का अध्ययन करूं। वर्तमान में हम मुरलियों का गहन अध्ययन करें, आप 4 घंटा योग में नहीं बैठ सकते हैं, बैठ भी नहीं पाएंगे, बैठना भी नहीं, लेकिन मुरलियां पढ़ो, बाबा जो कह रहा है बीच बीच में, जरूरी नहीं पूरी मुरली पढ़नी है, 2 लाइन पढ़ी अब मुझे कहां हिट हो गई पॉइंट, तो मुझे प्रतिदिन कम से कम बाबा कहता 8 घंटा याद नहीं 5 या 6 घंटा मौन व्रत जरूर रखना है। तो अपने आप याद, जैसे बाबा कहते हैं ना अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद स्वतः ही आएगी। तो आप सबका भी अमृत वेला सदा सदा पावरफुल हो, सफल हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद, ओम शांति। तो चलो अब बैठो 1 मिनट बाबा की याद में, बैठो, कॉपी पेन छोड़ दो और पक्का कर लो हमें जब भी बाबा की याद में बैठना है, चाहे नीचे बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, खाट पर बैठे हैं, मेरी बैठक ऐसी होनी चाहिए। और एकदम अपने भीतर जाओ, एकदम चित्त शांत। पहला अभ्यास करो, मेरा चित्त शांत, मैं शांति धाम में बैठी हूं और यही शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में जा रहे हैं, क्योंकि दाता बन के बैठना है, तब मेरा अमृत वेला सफल होगा। शांत चित और शांति के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का,
प्रभु शरण।